ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
रीडिंग फ्रॉम अच्छा अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पांचवें स्कंद के सत्रहवें अध्याय का श्लोक नंबर श्लोक संख्या 17, 18 एवं 19। तो 17 में कोई तात्पर्य नहीं है, 18 में तात्पर्य नहीं है और 19 में तात्पर्य है। तो हम लोग 19 नंबर श्लोक को अभी पढ़ेंगे।
नयस्य माया गुण चेत वृत्ति भीर निरीक्षतो हीणवपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नोजितमन्युअनरसा कस्तं न मन्येद जिगीषुरात्मनः। न
कभी नहीं यस्य जिसकी माया माया शक्ति माया गुण गुणों में चित्त हृदय की वृत्ति भी क्रियाओं के द्वारा चिंतन अनुभव तथा इच्छा निरीक्षतः निरीक्षण करने वाले का ही निश्चय ही अणु कुछ कुछ अपि भी दृष्टि दृष्टि अज्यदे प्रभावित होती है ईशे नियमन हेतु यथा जिस प्रकार न हम लोगों का अजीत जो जीता ना जा सके मन्यु क्रोध के रनहसाम वेग को का कौन तम उस ईश्वर को न नहीं मन्ये पूजा करेगा जिगीषु जीतने की कामना करने वाला आत्मनः इंद्रियों को। अब हम अनुवाद पढ़ेंगे 17-18 का और फिर 19 का। परम शक्तिमान भगवान शिव कहते हैं हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूं। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं, अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। हे प्रभो आप ही एकमात्र आराध्य हैं क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। आप भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभो, आप अपने भक्तों को भौतिक संसार के चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते, अतः जब हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो उनसे आकर्षित या विकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, किंतु परमेश्वर इस प्रकार कभी प्रभावित नहीं होते। यद्यपि इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संसार संहार के लिए इस पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु इससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। अतः वह जो अपनी इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, तभी वह विजयी होगा। तात्पर्य, भगवान सदा अचिंत्य शक्तियों से युक्त रहते हैं। यदि भी उनके द्वारा भौतिक शक्ति माया पर दृष्टिपात करते ही सृष्टि हो जाती है, किंतु भौतिक प्रकृति के गुणों से वे अप्रभावित रहते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति के कारण भौतिक प्रकृति के गुण उनमें व्याप्त नहीं होते, इसीलिए भगवान दिव्य कहलाते हैं। फलतः जो भी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचना चाहता है, उसे उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा सहगणा रघुनाथ विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। पांचकाल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम शक्तिमान भगवान शिव कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूं। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं, अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। तो भगवान शिव परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तदपर्तगस्ति हेतो यनशंभुताम समुपेत्ति कार्यात गोविंद नमादि पुरुषम तमहं बचामि। जैसे क्षीरम दूध से, यथा इस प्रकार दधि दही बनती है, विकार मतलब तोड़ या एसिड डाल के, ऐसे ही भगवान कृष्णा, हे गोविंदा, आपने सृष्टि के संहार के लिए ये अपना शंभु का रूप लिया, तो वो भगवान का ही एक्सपेंशन है। तो वो यहाँ पे भगवान शिव भगवान कृष्ण संकर्षण के उनके एक्सपेंशन की, क्योंकि भगवान के चार प्रथम जो एक्सपेंशन है उनके बारे में यहाँ पे बताया, और भगवान शंकर की वो स्तुति करके, और ये कह रहे हैं कि आप वैसे तो अनंत हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैतम आपके कोई बराबर नहीं, अद्वैतम अच्युतम आप कभी आपका पतन नहीं होता, आपका फॉल नहीं होता, आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करते। अद्वैतम अच्युतम अनादि आपका कोई अंत और आदि नहीं है। अनंत अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम और आपके इतने अनंत रूप हैं। एत चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंति युगे युगे। जितनी समुद्र में लहरें हैं इतने आपके इंकारनेशन हैं। और लेकिन आप अभक्तों के लिए अलक्ष्य मदर कुंती जो पांडवों की माँ है वो भगवान की प्रेयर स्तुति कर रही है आठवें स्कंद आठवें अध्याय में पहले स्कंद के अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर भई अवस्थितम। आप दिखते नहीं हैं, आप अनंत हैं, अनादि हैं, अच्युतम हैं। भक्तों को आप दिखते हैं, अभक्तों को नहीं दिखते। और भक्तों को कैसे? प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचने न संतत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब भगवान की ये देखिए क्या महिमा है कि प्रेम का अंजन आंखों में लगा के संतत सदैव, संत लोग जो हैं, जो भक्त लोग हैं, वो हर सेकंड हर मिनट एवरी हरेक क्षण भगवान के दर्शन करते हैं क्योंकि उनके अंदर भक्ति का भाव है। विलोकयन्ति देखते हैं और क्या देखते हैं? क्या कोई लाइट देखते हैं या कोई वहां पे निराकार चीज देखते हैं? नहीं, जो ये श्याम सुंदर हैं, जो हमारे राजा श्याम सुंदर हैं, उनकी जो दो हाथ और वही सब बड़ी बड़ी आंखें, लोटस आईज, कमल के जैसी आंखें, नमो पंकज नाभाया नमो पंकज मालिने नम, तो मदर कुंती जो है वो क्वीन कुंती रानी कुंती जो है पांडवों की माँ, ये सब उनकी वर्णन को देख के कहती हैं पंकज नाभाया लोटस पंकज कमल, आपकी आंखें कमल जैसी हैं। ये वर्णन उन लोगों ने भक्तों ने देखा और कुंती हालांकि रिश्ते में बुआ थी लेकिन उन्हें पहचान लिया। ये रिश्ते जो हैं वो अर्जुन ने भी पहचान लिया। अर्जुन ने भी शुरू में एक मित्र की तरह बात रखी कि मैं परेशान हूँ, लड़ना नहीं चाहता, मुझे थोड़ा भ्रम हो गया है कि क्या है ये सब कुछ, मैं ये मेरे रिश्तेदार हैं कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ, गांधी सत्सते हस्त्रात मेरे हाथ से गांधी भी छूट रहा है, आंखों में आंसू हैं। वो भगवान को कहते मैं क्या करूं, शिष्यस्ते अहम शादी माम तो हम प्रबंधम, मैं आपको सरेंडर करता हूं, आपके चरणों में पड़ता हूं और अब मैं आपका फ्रेंड वगैरह ऐसे नहीं, कुछ मित्रता की बात अब छोड़ो, अब आप मैं शिष्य हूं आपका, आप मुझे ज्ञान दो, गाइडेंस दो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। तो यहां पे भगवान शिव जबकि शुरू में यहां पे आया श्री भगवान वाच। जनरली आमतौर पे भगवान जो शब्द है वो भगवान कृष्ण के लिए यूज होता है लेकिन भगवान शब्द जो है वो कई बार औरों के लिए भी आया है। सयेशा भगवान द्रोण, द्रोणाचार्य को भगवान, भगवान बादरायण व्यासदेव के लिए भगवान यूज, भगवान नारद, भगवान शिवा। तो हमें यहाँ पे समझना होगा भगवान कौन है। भगवान एकला ईश्वर कृष्ण, एक ही कंट्रोलर है, एक ही भगवान है, सुप्रीम भगवान, सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान, जो अपने सच्चिदानंद विग्रह में है वो भगवान है, बाकी हम सब लोग उनके विस्तार है, उनके एक्सपेंशन है। अब ये बात यहां पे जो भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य ओपुलेंस, भगवान की छह ओपुलेंस है, ऐश्वर्य समग्र से वीर से श्रिया, सबसे सुंदर है, सबसे शक्तिमाली शक्तिशाली है, सबसे ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा रिनाउंस है, उनको कोई लगाव नहीं है, तो इस तरह से सबसे ज्यादा ज्ञान है। तो ये जो छह ऐश्वर्य हैं, छह जो ये भगवान के एट्रीब्यूट हैं, उनके रूप हैं, उनके अंदर ये छह क्वालिटी हैं, गुण हैं, ये चीज भगवान ने अपने भक्तों से भी शेयर की है और भक्तों में भी ये चीजें हैं, लेकिन कंप्लीट पूरी फुल कि जब हम सुंदर लोगों की लाइन लगाते जाएं तो एंड में जो सबसे सुंदर निकले वो कौन है? भगवान कृष्ण। हम सबसे ताकतवर लोगों की लाइन लगाएं तो एंड में बाद में सबसे आखिर में जो सबसे ताकतवर निकलेगा सबको हरा देंगे वो कौन है? भगवान कृष्ण है। कितना आसान है समझना। तो यहां पे भगवान शिव को भी भगवान कहा, लेकिन शिव जी को मालूम है कि लोग उन्हें भगवान कहते हैं लेकिन वो भगवान नहीं है, वो सुप्रीम भगवान नहीं है। वो खुद जानते हैं, अगर उन्हें कोई कहता भी है कि आप सुप्रीम भगवान, तो बुरा मान जाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मुझे कोई कहने लगे कि आप ये मोदी हैं, तो मुझे क्या लगेगा? भाई मैं मोदी कहाँ हूं, मैं तो मैं ही हूं। तो अपनी मुझे स्थिति को मैं जानता हूं, लेकिन कुछ लोग जो मेरे अंडर में काम करते हैं वो मुझे साहब आप माई बाप हैं, आप मेरे ये हैं, तो वो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मैं उसको अपने ऊपर नहीं लेता ऐसे कह रहे अच्छा सबने मुझे भगवान कहा तो बस मैं ही भगवान हूं, ऐसा नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हे प्रभु, भगवान शिव आगे कहते हैं, एकमात्र आप ही आराध्य हैं, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्य के आकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो आराधना नाम अभी सर्वेशम, पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि किसकी आराधना करें? आराधना नाम अभी सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम दर्शनम। कि अगर पार्वती जी आप मुझसे पूछ रही हैं कि किसकी आराधना करें, तो ठीक है मैं बताता हूँ कि विष्णु की आराधना परम है, लेकिन अगर उससे भी बड़ी आराधना कोई है तो भक्तों की, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, जो भगवान के गुणगान में लगे हैं, जो भगवान के महिमा का मंडन, भगवान की महिमा को सब लोगों को बताने में जो व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, उनकी सेवा भी भगवान की सेवा के बराबर है, हो या उससे बड़ी भी है। तो यहां पे आपके चरण कमलों का, तो ये कहते हैं कि आपके, भगवान शिव कह रहे हैं आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। तो चरण कमलों की महिमा, ये चरण कमल भगवान के एक नाव की तरह हैं। यत पाद पंकज वट, ये क्या यहां पे बताया कि चरण कमल भवामुदी वत्स पदम पदम यस्यास्ति भक्ति भगवती या किंचना सर्वे तत्र समासिते। नो नो, ये नहीं है। दूसरा है कि जिसमें भवामुदी वत्स पदम पदम से शुरुआत कहां से है? यत पाद पल्लव, नो या नहीं, ये नहीं है। तो उसमें यही बताया कि पदम पदम यद विद्याम न तेषाम समासिता ये पाद पल्लव प्लवम गतो मुकुंदशो हरेर मुरारी भवामुदी वत्स पदम पदम यद विद्याम न तेजाम समासिता। जो बैठ गए आसीत हो गए, यह समासिता ये पाद पल्लव प्लवन, जिन्होंने आपके चरणों की बोट में स्थान ले लिया है, यशो मुकुंद गतो हरे मुरारी, जो आपके चरणों का गुणगान में लगे हुए हैं। भवाम बुद्धि वत्स पदम, ये जो भव का सागर है, अम्बुधि भव टू बी, यहां बार बार इस संसार में आने का जो ये संसार का सागर है, बार बार जन्म लेना, बार बार वही कह के गए ABCD पढ़ के, फिर बड़े होके, फिर PhD करके, फिर मर के, फिर दोबारा दूसरे जन्म ले, फिर कह के गए से बिगिन करके, फिर ABCD पढ़ के, और फिर बार बार यही सब, और कई बार किसी कोई गलती हो गई तो बीच में के कोई जानवर बन गए। तो ये जो जन्म जन्मांतर का जो ये प्रक्रिया है, इसका जो संसार का सागर है, इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने भक्तों को भोग के संसार के चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। चंगुल है भगवान, ये माया का जाल है, ये जन्म जन्म कुछ लोगों ने, जो भक्त इस्कॉन में भक्त हैं या और भी जगहों पे भक्त हैं, उन लोगों ने ये फैसला किया कि नहीं, हम लोग इस माया के, इस संसार के सागर में नहीं फंसने वाले। उन्होंने भगवान के चरणों की शरण ली और तुरंत ये फैसला किया कि अब हम आज के बाद भगवान को पूर्णतः समर्पित है, हमारा जीवन मन क्रम वचन से हम भगवान को समर्पित हैं। ऐसे लोगों के लिए ये भव का सागर है, यहाँ पद पद पे विपदा है, कदम कदम पे विपदा है, पदम पदम जत विपदाम न तेषाम, उनको नहीं है जिन्होंने भगवान के चरणों की शरण ले ली। और ये जो पद, जो ये जो भव का सागर है, ये कैसा बन जाता है? वत्स पदम, वत्स मतलब गाय का बछड़ा, और बछड़ा जब नदी के किनारे चलता है तो कुछ पैर का निशान बन जाता है, ये भी नहीं कहा कि गाएं, वत्स पदम, कैसे छोटा कुछ हो नहीं सकता। तो वत्स पदम, बछड़े के पैर का निशान नदी के किनारे जब बन जाता है तो बारिश की कुछ बूंदे उसमें इकट्ठा हो गया, एक थोड़ा सा पौंड सा बन जाता है छोटा सा। तो ये भव का सागर भक्तों के लिए इतना सा रह जाए, ये भगवान की महिमा है, ये भगवान का भक्तों के प्रति अनुग्रह है, ये भगवान का भक्तों को आशीर्वाद है, प्रॉमिस है, वचन है कि न मैं भक्ता प्रणशति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये अर्जुन तुम कहो, मैं तो कई बार अपनी बात से मुकर भी जाता हूँ, बात से बदल भी देता हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त को बचाने के लिए उन्होंने रथ का पहिया उठा ली। ऐसे ही उन्होंने अश्वत्थामा के दृष्टि से झूठ बुलवाया। कुछ लोग कहते हैं कि दृष्टि नरक का मुंह देखना पड़ा दृष्टि को क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। नो, ऐसा नहीं है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने कहा कि दृष्टि महाराज को नरक का मुंह इसलिए देखना पड़ा कि उन्होंने झूठ बोलने में देरी की, और जो डिले थी वो जो उन्होंने कहा अरे मैं तो धर्मराज हूं, मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, मैंने तो झूठ नहीं बोला, मेरी बात को द्रोणाचार्य सुनेंगे, वो कहेंगे कि अरे युधिष्ठिर मैं तो तुम्हारी वजह से हथियार रख दिए और तुमने झूठ बोल दिया। ये मोरालिटी है, ये एक नैतिकता है। लेकिन इस नैतिकता को भी जैसे गोपियों ने कि आप पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, और सब नैतिकता वैतिकता सब छोड़ के और भगवान की बांसुरी बजी और सब गोपियां और राधा और सब लोग दौड़ के सब कुछ छोड़ के, किसी ने उल्टी साड़ी पहनी हुई है, किसी ने बिंदी उल्टी सीधी लगाई हुई है, किसी ने चूड़ियां कुछ उल्टी, एक आदमी साड़ी पहन ली, किसी ने एक भी नहीं पहनी, किसी के कुछ सिंदूर कहीं लगा है, किसी के बाल बिखरे हुए हैं, सब कुछ छोड़ के, ये जो नैतिकता का, तो ये जो यहाँ पे आगे इसमें बताया कि आपकी इच्छा से, शिव जी कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान शंभु, भगवान शिव संकर्षण भगवान की, जो भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है, उनकी आराधना स्तुति करते हुए ये सब बातें कह रहे हैं कि अभक्त लोग जो है वो भौतिक संसार में उलझे रहते हैं, और कृपया मुझे नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद अब ये बात आई है तीसरे श्लोक में जो 19वां नंबर का है कि हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते, बता रहे हैं वो, क्योंकि भगवान शंकर जो है वो, शंभु जो है वो बहुत आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं, बहुत आसानी से गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, इजिली प्लीज्ड इजिली एंगर्ड, तो जरा सा बच के रहना पड़ता है कि जरा सी कोई मिस्टेक हुई तो एंग्री भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्णा कभी एंग्री नहीं होते, तो यहाँ पे बता रहे हैं अपनी वीकनेस बता रहे हैं और हमारी तरफ से बोल रहे हैं। इनफैक्ट सच में तो भगवान शंभु शिव बहुत कभी किसी मौके पर थोड़ा बहुत कभी नाराज हुए किसी वो भी अभक्त के ऊपर या किसी राक्षस के ऊपर, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कह रहे हैं कि लेकिन हम लोग अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी कमी है क्रोधात, क्यों श्लोक है, दो श्लोक कौन से हैं, क्रोधात भवति सम्मोहा, उससे पहला क्या है, जाए तो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते काम काम क्रोध भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। ये पूरी एक सीक्वेंस है फॉल डाउन की। जब कोई आदमी का पतन होता है तो शुरुआत कहाँ से होती है, ध्याय तो विषया पुंसा, हमारी जो ये आंखें हैं ना ये कुछ कुछ देखती रहती हैं और देखती रहती हैं और माइंड एकदम से इन इंद्रियों के द्वारा अपने आप कहता आहा बहुत बढ़िया ये जो है वो देख रहा है, अब मैं इसके दिमाग में घूम के इसके इंटेलिजेंस को इसकी नॉलेज को ज्ञान को भ्रमित करके और इसको लगा देता हूँ, बहुत बढ़िया वेरी नाइस बहुत अच्छा लगा ये सब देखा, किसी को देखा, किसी जगह को देखा। तो ध्याय तो विषया विषय विषय मतलब भोग की चीजें कि मैं किस तरह कोई भी चीज मुझे दिखे ये मुझे मिल जाए तो मैं कैसे इसको एंजॉय में, और जब वो नहीं मिलती या तो विषय पूछा संग मुझे अटैचमेंट संगस्तेशु उपजाए तो मेरे हृदय में उस चीज को देख के अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस्तेमाल करने के लिए यूज करने के प्रयोग करने के लिए मैंने सोच लिया प्लान बना लिया मुझे अटैचमेंट हो गया कि मुझे लेना है। और फिर क्या हुआ, ध्याय तो विषय पुंसा संगस्ते संगा संजायते काम, अब ये जो मुझे हो गया मुझे काम लस्ट और काम क्रोध अभी जायते मुझे इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जब भी हम किसी को क्रोधित रूप में देखते हैं तो इसका मतलब उसके पास कोई एजेंडा है, कोई पूरा एक लाइन ऑफ डिजायर्स है, पूरी लिस्ट है उसके पास में, और वो लिस्ट पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये दुनिया या इस संसार में हमारी जो इतनी बड़ी लिस्ट है डिजायर्स की, भगवान उसे पूरा करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बहुत बड़ी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, भगवान के पास मंदिर में भी जाते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, तो वो लिस्ट भगवान का काम ये नहीं है कि वो लिस्ट पूरी करें हमारी, हमें तो अपने कर्म भाग्य से चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो भगवत भक्ति है, जो भगवान का नाम है, जो भगवान की महिमा का गुणगान है, ये हर जन्म में नहीं मिल सकता। तो इसलिए हम लोगों को अपनी जितनी भी शक्तियाँ हैं उसको इसमें नहीं लगाना। तो इसमें ये भी कहा कि भगवान के चरण कमलों की और भगवान की शक्तियाँ हैं। इसमें कहा कि जब हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो उनसे आकर्षित और विकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते, किंतु परमेश्वर प्रभावित नहीं होते। यद्यपि भौतिक जगत की सृष्टि पालन संहार हेतु इस पर दृष्टिपात करते हैं, रंशमान भी प्रभावित नहीं होते। मतलब भगवान इस दुनिया में आते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, कई बार उदाहरण दिया कि जैसे कोई जैसे एक बार हम लोग अमेरिका में आइडाहो में जेल में वहाँ प्रिजन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर चंद्रशेखर आए हुए, चंद्रशेखर प्रभु आए हुए थे, तो उनके साथ में प्रिजन में प्रीचिंग करने गए। वहाँ एक प्रभु हैं चंद्रदास प्रभु, वो काउंसलर हैं जेल में, सेंक रिवर एरिया प्रिजन पेयट रिवर के पास है। तो वहाँ हम लोग गए तो जेल के अंदर, जेल बड़ी सुंदर थी वहाँ की, मन कर रहा था यहीं रहो। वाकई अमेरिका की जेल बहुत सुंदर है, और वहाँ पूरा जिम विम सब बढ़िया, वेट लिफ्टिंग के अरेंजमेंट हैं, टीवी है, न्यूज़पेपर है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। कुछ लोग तो वहाँ जेल में चले जाते हैं जान के कि वहाँ सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे जो हम लोग गए, हमारे साथ में चंद्रदास प्रभु थे, तो हम लोग चंद्रदास हमारे आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे, तो ऐसे जैसे कि भगवान उनके भक्त पीछे पीछे दुनिया में आते, प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी यहाँ आए, तो लेकिन वो हमारी तरह नहीं आए, वो हमारे कर्मणाते हमने त्रेणा जंतुर देह उपपत्ति, वो इस फार्मूले से नहीं आए जो मदर देवहूति को कपिल देव ने बताया कि जीव का जन्म कर्मणा देव ने त्रेणा, देवों के नेत्र लगे हुए हैं और हमारे कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं हर मिनट, और अगर कोई कर्म हम बचा बचा भी लें, छिपा के कर दें, तो हमारे हार्ट में भगवान खुद सेंसर की तरह बैठ के हमारा हर थॉट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी क्या सोचा, इसके बारे में क्या सोचा, तो भगवान सब क्या ठीक है, मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है, क्या सोच रहे हो तुम बैठे हो यहाँ पे, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है, भगवान को मालूम है। इसीलिए दुनिया से आदमी भाग सकता है लेकिन भगवान से नहीं भाग सकता। जग से भाग लो, सबसे छिपा लो, लेकिन भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। तो जब माता यशोदा भगवान को बांधना चाहती हैं, दामोदर को बांधना चाहती हैं रस्सी से, तो जो भगवान की शक्तियां हैं, क्योंकि भगवान जब लीला करते, क्योंकि भगवान जो है वो यहां इस दुनिया में आते हैं, लेकिन वो उनकी जो शक्तियां हैं वो उनके चारों तरफ रहती हैं। कई बार को मैंने महाराज से पूछा, गोपाल महाराज से, इजोलिनस गोपाल महाराज से पूछा कि महाराज ये भी कोई आनंद की चीज है कि आप भगवान हैं और आप खड़े हुए हैं, रस्सी से आपको बांध रही हैं मदर यशोदा, आप आनंद ले रहे हैं। कैसे आनंद लेंगे अगर आपको ये पता है आप भगवान हैं? देखिए कमाल की बात क्या है कि अगर मदर यशोदा कृष्ण को बांध रही है रस्सी से और उनको ये पता है कि मैं तो भगवान हूं, तो वो कैसे, वो रोएंगे, वो रोने में वो एक्टिंग नहीं कर रहे रोने की, वो अभिनय नहीं कर रहे हैं रोने का, उनकी उनकी आंखों में भय है, मदर यशोदा का डर है, उनकी सांस मुंह श्वास कंपा, उनकी श्वास अंदर आते आते उनके होठ कांप रहे हैं, ही इज नॉट एक्टिंग, वो मां से डर रहे हैं वाकई। तो ये कैसे सब लीला है, कैसे भगवान ये सब करते हैं और उससे आनंद लेते हैं उन लीलाओं का गोपियों के साथ, और बड़ी गोपी राधा रानी और ये मदर यशोदा और तमाम गोपियों के साथ में मटकी फोड़ना कर सब कैसे, क्या वो एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो अभिनय नहीं कर रहे हैं, वो उनकी जो शक्तियां हैं वो उनके चारों तरफ चलती हैं उनके साथ में, और वो अपनी शक्तियों से जो उनकी योग माया है वो उनको जब समय आता है तो कह देती हैं कि अब पूतना आई है, इसको जरा ठीक कर दो। वैसे वो बेबी हैं, छोटे से बच्चे हैं, पूतना का दूध पी रहे हैं, लेकिन उनकी शक्तियां उनको एकदम से वही स्वरूप उनका जो जो सच्चिदानंद जो उनका स्वरूप है उसको तुरंत वो शक्तियां उनको लाके और उनसे उस तरह से चीजें करा देती। तो ये एक अद्भुत चीज है जो कि इसीलिए हमें भगवान के जो भी अपनी इंद्रियों पे, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट आया ये प्रॉपर्ट में ट्रांसलेशन में 19वें श्लोक में, अतः वह जो अपनी इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसे भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। तो नारद पंचरात्र में सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधियों से मुक्त हो जाओ कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, अमेरिकन इंडियन हूँ, काला गोरा हूँ, या नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन हूँ, सारी उपाधियाँ ही हमारे जन्म से हम पे थोप दी गई हैं, इनसे मैं मुक्त होना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम और तत्परते न निर्मलम, जैसे एक बच्चा है वो छोटा है तो उसे उसके पास में कोई अपना बहुत अच्छा खिलौना है तो वो किसी को भी दे देगा, शेयर कर लेगा, कोई उसे बात अच्छी बुरी कह दो उसे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा खुश रहता है। तो ऐसे इतना पवित्र होना, बच्चा इतना शुद्ध होता है शुरू में, धीरे धीरे संसार की माया और ये सब में आके फिर बाद में ये सब छोड़ के दोबारा से निर्मल होना है, कितना मुश्किल काम। इसीलिए चार कुमारों ने फैसला किया कि बड़े होना ही नहीं, ऐसे कैसे ठीक है, क्योंकि बड़े होंगे तो फिर ये चक्कर पड़ेगा। तो उन्होंने अपने आप में फैसला किया कि हमें बड़े होंगे तो इंद्रिया हमें परेशान करेंगी, तो बड़े होने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे कैसे छोटे छोटे बेबीज हो। उन्होंने इस तरह से जो है वो अपने आप को वरदान उनके लिए मांगा। तो जो श्लोक था ये अभी नारद पंचरात्र का, सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम, हम अपने आप को पवित्र करेंगे। कैसे पवित्र करेंगे? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, हमें भक्ति करनी है, किसकी करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, किसकी करनी है, ऋषिकेश की। ऋषिकेश कौन है? जो ऋषिक मतलब इंद्रियों के ईश मतलब स्वामी है। तो हमारी इंद्रियों के स्वामी ये हाथ है, अभी उठ गया है, अभी पैरालिसिस हो जाए, जब पैरालिसिस हो जाता है तो क्या वो हाथ उठ सकता है? नहीं उठ सकता। तो कौन है कंट्रोलर, कौन है मास्टर, कौन है ईश्वर, कौन है ईश? भगवान है। तो जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की शरण में भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो वो चीजें जैसे पुनर्मूषिका भव, एक बार एक चूहा था वो एक ऋषि के आश्रम में रहता था। हम लोगों ने ये एक इस पर ड्रामा भी किया था स्कूल में। तो उसमें ही था कि वो बच्चा वो चूहा जो है वो श्री ऋषि के आश्रम में रहता था तो घूमता रहता था। तो एक दिन उसे ऋषि जो थे वो बहुत अपने ध्यान में मग्न थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लाइक दैट। और तभी वो चूहा आया, स्वामी जी मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, मुझे बिल्ली बना, कैन यू मेक मी ए कैट। स्वामी जी गुरु जी सन्यासी महात्मा बोले, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिल्ली बनने से तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? मैंने जी महाराज, तथास्तु। अब वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर करके वहां इधर उधर घूमने लगा। अब चूहे कोई चिंता नहीं। तभी एक कुत्ता भौंकता हुआ आया, बिल्ली भागी पेड़ पे चढ़ गई। तो स्वामी जी के पास वो पहुंचा, वो पहुंची बिल्ली जो पहले चूहा थी। तो उसने कहा कि महाराज म्याऊं, महाराज क्या आप मुझे म्याऊं कुत्ता बना सकते हैं? भो भो, तुम ये समझते हो कि कुत्ता बनने तुम्हारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? जी महाराज। तथास्तु, भौं भौं भौं, वो कुत्ता बन गया। अब बिल्ली का कोई डर नहीं। अब जब वो कुत्ता बन गया तो बिल्ली का कोई डर नहीं। तो एक दिन वो जंगल में घूम रहा था, तभी वो शेर की दहाड़ आई, शेर के उसके पीछे भागा, वो भागा भागा हाँफता हाँफता आश्रम में आया। अब महाराज गुरु जी सन्यासी जो भी महात्मा बैठे हुए थे उनसे कहा कि महाराज मुझे अगर आप शेर बना दे तो ये सारी समस्या, कि शेर जंगल का राजा, फिर किसी को कोई भय नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम समझते हो कि शेर बनने से तुम्हारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, हल हो जाएंगी? कि यस महाराज, ठीक है बिल्कुल। तथास्तु, अब वो शेर बना। शेर बनते कहा, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, वो करके जो महात्मा जी थे उन्हीं के ऊपर झपटा, और महात्मा जी ने कहा पुनर्मूषिका भव, फिनिश। तो जो ये हमें पावर, पोजीशन, ह्यूमन बॉडी, ये मनुष्य का शरीर, ये पैसा, ये भाग, कितने भाग्यशाली हम लोग। मैं जब ये पढ़ता हूं भागवतम, तो मुझे लगता है कि हिंदी में पढ़ो और संस्कृत में पढ़ो तो कितना आसपास है चीजें, जो हम लोग ट्रांसलेटर वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, मन मन, इंद्रिया इंद्रिया, तो सारे कुछ वही है। कितना सब कुछ आसान हम लोगों के लिए है। जब मैं 1993 में अमेरिका गया पीएचडी करने के लिए, तो इंडिया में, भारत में जैसे हम लोग होते हैं सब अच्छे अच्छे परिवारों में, संस्कार, पूजा पाठ, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शंकर जी को जल चढ़ाना, दुर्गा के जागरण में जाना, ये सब चीज़ें, घरों में पंडित जी का आके हवन करना, ये सब बातें बहुत कॉमन यहाँ इंडिया में, भारत में जिन्होंने जन्म लिया उतना उनको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इतना सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता क्योंकि हम लोग वहीं तक अटके रहते हैं। तो जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ, अब मुझे जब पता लगा, मैं इस्कॉन के सेंटर में गया, छोटा सेंटर था, तो वहाँ पे जब ये हरे कृष्णा मंत्र और इसकी महिमा को मैंने सुना, समझा, तो और वहाँ देखा कि एक अमेरिकन महाराज, वो आए, उन्हें हजारों श्लोक याद हैं, और वो एक के बाद एक सारी फिलॉसफी को बढ़िया उन्होंने एकदम प्रेजेंट किया। तो मुझे लगा कि हम लोग तो फेल ही हो गए, हम लोगों ने क्या किया, सब कुछ मिला और काहे में लगा दिया कि ये सब करने में, कि जो वो लोग कर रहे थे बाहर के लोग, उनकी कॉपी करने में सारा जीवन लगा दिया। और अपनी अभी फ्रांस के राजदूत जो भारत में हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा वक्तव्य है, कहीं उनको बुलाया किसी स्कूल में, तो उन्होंने एक स्पीच दी, और स्पीच में कहा कि मुझे गर्व है कि नेपोलियन बोनापार्ट हमारा शासक था, जिसने पूरी दुनिया पर अटैक किया, राज्य करना चाहा, हमें गर्व है अपने इतिहास पर, हमें गर्व है कि हमारे पास में आज तकनीकी ज्ञान है। लेकिन भारतवासियों, तुम भारत के बच्चे हो, देशवासी हो, तुम्हें अपनी किसी भी चीज पे गर्व नहीं है, सिर्फ ये मानते हो सब बकवास, जो कुछ हमारे वेद शास्त्र सब तुम्हें, माइथोलॉजी, फिलोसफी सब, पूरी दुनिया में भारत की, जब प्रभुपाद जी इंग्लैंड में पहुंचे, पत्रकार लोग आए, स्वामी जी आप इंग्लैंड क्यों आए, हमारे यहां तो चर्च वगैरह सब है, भगवान का नाम ऑलरेडी पहले से चल रहा है, आप आगे क्या आपने किया, क्यों आए आप? तो ने कहा, तुम लोग भारत में आए, तुमने मंदिरों को लूटा, सब चीज लूटी, सारे हीरे जवाहरात सब कुछ उगाड़ के, मूर्तियां हजारों तुम उखाड़ उखाड़ के, सोने चांदी के जवाहरात सब ले गए, लेकिन एक वो चीज जो सबसे मूल्यवान थी वो तुम नहीं लेके आए, मैं वो देने आया हूं। तो प्रभुपाद जी की देखिए, ये जो चीज, भारत का जो विज्ञान है, भारत के जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र का मतलब Seeing things as they are, जो तत्वतः, तत्वदर्शिना, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, जो तत्व को समझना है, हमारे ज्ञान जो हमारे वेदों में, पुराणों में, जो ये गहराई से इतनी इतनी व्याख्या है, अगर इनको नहीं समझा, भारत भूमि जन्म हो ले जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ वो महान है। अगर तो ये जो हमें मिला, और जब मैंने वहां देखा कि किस तरह से अमेरिका के लोग माला कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अंदर से महसूस हुआ कि हम लोगों ने ये माला क्यों नहीं समझी, क्यों ये भारत में, उस वक्त 1993 में, आज से करीब 25 साल पहले, हिंदुस्तान में इतना प्रचार उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था, शुरुआत ही थी, मंदिर बन रहे थे, भक्त लोग बन रहे थे, तो जब कभी किसी छोटा रखते हुए मेरे पुत्र को जब लोग देखते थे तो कहते, ये क्या कर दिया इसका, छोटा रखवा दिया। लेकिन अभी इस तरह की समस्या नहीं रही है, अब छोटा धारी बहुत लोग हैं, अब हम अगर रेल में जाते हैं, बस में बैठते हैं, छोटा रखे हुए है, शेविंग है, तिलक लगा हुआ, कंठी माला के साथ, भक्त लोग माला करते हुए आपको बसों में मिल जाएंगे, रेलों में मिल जाएंगे, हवाई जहाज में मिलेंगे। ये प्रभुपाद जी का और उनके भक्तों का ये चमत्कार है कि कलयुग के समय में भक्तों ने इस कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना अमृत को इस तरह से अपने हृदय से धारण करके और पूरे विश्व का प्रचार का बीड़ा उठाया। और जो हमारे भक्त लोग हैं, ये लोग खाली नहीं बैठते, रात दिन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं कि कैसे भगवान का नाम गली गली और गांव गांव में पहुंचे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ये कहा कि गली गली नगर आदि सर्वत्र होए मोर नाम, उनका नाम गली गली नगर में होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम होगा तो होके रहेगा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण खुद हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। निमित्त मात्र भव सव्य साची, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा कि तुम निमित्त मात्र बनो, जितने लोग यहाँ आए हैं सब ये डेड हैं, कोई जिंदा नहीं जाएगा, एक भी वापस नहीं जाएगा, पहले से ही सब डिक्लेयर्ड है। अब तुम ये सब आंसू वासू छोड़ो, अपना कर्तव्य करो, गांडीव उठाओ, युद्ध करो और निमित्त मात्र बन जाओ। ऐसे ही हम लोग निमित्त मात्र हैं, जहाँ ग्रह ठाको बने ठाको सदा हरी बोले डाको। हम जिस भी ग्रह में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, हम लोग जो हैं वो, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ नतस्य कार्यम कर्णम च विद्यते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, सॉरी नतस्य कारण कार्यम कर्णम च विद्यते नतस समस च अभ्याधिक च दृश्यते परास्य शक्ति विभिन्न सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान भला क्रिया। तो भगवान को कोई कार्य न तस्य कार्य, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तभी भगवान कृष्ण को देखो, राधा विशाखा ललिता 16108 रानियां गोपियां बांसुरी बजा रहे हैं, भोग बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान को कोई काम कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है। और परास्य शक्ति, उनकी जो शक्तियां हैं, जैसे यशोदा माई भगवान को बांधना चाहती है, शक्तियां बांधने नहीं देती, रस्सी फिर छोटी पड़ गई, रस्सी फिर छोटी पड़ गई, क्योंकि शक्तियां हैं उनकी। और स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट, स्वाभाविकी, ये स्वाभाविकी क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का विग्रह क्या है, सच्चित आनंद, ये भगवान का स्वभाव है। और ज्ञान बल क्रिया, तो ज्ञान एंड नॉलेज, बला पावर शक्ति, ज्ञान क्रिया और बल, इनसे जो है वो भगवान ये सारे कार्य इस जगत के होते रहते हैं उनकी शक्तियों के द्वारा। और इसके अलावा जो भगवान के भक्त लोग हैं उनको भी भगवान अपनी ओपुलेंस, अपनी जो ये शक्तियां हैं, भक्तों के पास भी आती हैं, जैसे प्रभुपाद जी वो देख सकते थे और भगवान उनके थ्रू, उनके द्वारा उस तरह से कार्य करते। जैसे एक बार दो भक्त लोग जो आज भी हैं और मिलते रहते हैं हम लोगों से वृंदावन में, तो जब प्रभुपाद जी से वो मिले, उन्होंने अपने संस्मरण में अपनी किताब में लिखा कि मैं अपने एक भक्त के साथ, दूसरे भक्त के साथ प्रभुपाद जी से मिलने पहुंचा और प्रभुपाद जी ने अपने गले में जो मोटा सा हार था वो उतार के जो मेरे साथ में एक भक्त था उसके गले में डाल दिया। और मुझे लगा कि मैं सीनियर हूँ, सॉर्ट ऑफ कुछ हद तक थोड़ा हो सकता है ज़्यादा एडवांस हूँ इस भक्त से, लेकिन प्रभुपाद जी ने हार उसके गले में डाल दी। तो प्रभुपाद जी के किसी काम को, तो बाद में पता चला उन भक्त ने लिखा कि मेरे गले में वो हार नहीं डला, लेकिन बाद में वो भक्त दूसरे जो थे वो इसको उनको छोड़ के चले किसी बात पे। तो आप यहां समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी को ये ज्ञान था, प्रभुपाद जी को ये दिख रहा था, ये भगवान उनको उस तरह से दिखा रहे थे कि ये भक्त जरा कमजोर है, इसको ज्यादा कृपा चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कुछ गुरु लोग इस तरह से एक्ट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो हमें लगता है कि महाराज ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम अपने भौतिक दृष्टि से उस चीज को समझना चाहते हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। महाराज लोग या अच्छे विष्णु शिलादि गुरु सुनर्मति, गुरु को अगर हम साधारण मनुष्य की तरह समझें, अपनी तरह समझें, तो इससे बड़ी कोई मिस्टेक हो नहीं सकती। कई बार भक्त लोग गुरु से दूर हो जाते हैं, ये डिसाइपल कोर्स की चीज है कि गुरु को हम लोग साधारण ना समझें। और गुरु इस्कॉन में इसलिए पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक तरीका है कि यहाँ ऐसे नहीं कि कोई भी सैफरन कपड़े पहन के और गले में एक माला सी डाल के कि मैं तो गुरु हूँ। यहाँ पूरा वेटिंग पीरियड है 5 साल का, पूरी वॉच है, पूरा मेंटेनेंस है, क्योंकि कलयुग में संन्यास वर्जित है। लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने इमरजेंसी की वजह से, क्योंकि हमें जल्दी से 10,000 साल तक इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए संन्यास वगैरह दिया गया, संन्यास वर्जित है। तो लेकिन ये इसलिए कि ताकि ये हो सके, तो इसीलिए इस्कॉन में बड़ा उसके लिए वॉच रखनी पड़ती है। अगर कोई लोग फॉल डाउन हो जाते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जो लोग हैं आज ये आश्चर्य की बात है। जो लोग आज पूरी ताकत के साथ में प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये एक आश्चर्य की बात है कि इतना माया का जाल चारों तरफ है और उसमें ये भक्त लोग भगवा कपड़े धारण करके भगवान के चरणों में पूरी जिंदगी को समर्पित करके ऐसे आगे बढ़ रहे हैं पूरे जोश के साथ में और भगवान के चैतन्य महाप्रभु के मिशन में अपनी जीवन को सफल कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण।